कृष्णा, आज के खुशी के दिवस पर, जबकि हम सब एक दिन के लिए भोजन से मुक्त हो गए हैं, दो रविवार पहले चर्चा जो आरंभ हुई थी, वैष्णव कौन है, इस विषय के ऊपर चर्चा जारी रखेंगे। जब वैष्णव कौन है ये बात चल रही है, तो यह भी महत्व की बात है कि वैष्णव वो होता है जो एकादशी के व्रत का पालन करता है। यह भी एक परिभाषा है, नियमों का पालन करने वाला। एकादशी का पालन करना आध्यात्मिक उन्नति के लिए अति आवश्यक है, और जो भी वैष्णव भक्ति में प्रगति करना चाहता है, उसे इस एकादशी व्रत का पालन करना अनिवार्य है। बल्कि इतना कुछ वैष्णव धर्म के बारे में जानकर, सुनकर, भगवान का नाम लेकर कोई व्यक्ति एकादशी पे अन्न खाएगा तो फिर यह बहुत बड़ा पाप हो जाएगा उससे। बताया जाता है कि एकादशी के दिवस पर अन्न में मूर्तिमान पाप निवास करता है, तो जो व्यक्ति अन्न ग्रहण करता है एकादशी के दिन पर, वो साक्षात पाप खाता है। इसलिए भगवान को भोग चढ़ाया हुआ प्रसाद, यहां तक कि महाप्रसाद भी, अगर वो अन्न है, ये अन्न से स्पर्श किया हुआ है, तो उसे भी हमें ग्रहण नहीं करना चाहिए, दूर से सम्मान करना चाहिए, या तो अगले दिन के लिए रखना चाहिए और द्वादशी के दिन हम उसको आराम से प्रेम से सेवन कर सकते हैं। और साल में एक बार ये एकादशी आती है कि जब हम निर्जल उपवास रखते हैं। वैसे वैदिक काल में हर एक व्यक्ति, किसी भी वर्ण का क्यों न हो, वो निर्जल उपवास रखता था। साधारण आदमी भी समाज में निर्जल उपवास रखता था, लेकिन आजकल कलयुग में, क्योंकि हमारी हर दृष्टि से क्षमता योग्यता सब कम हो गई है, हमारे लिए साल में एक बार ये करना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो कम से कम इस एक साल में एक बार अगर हमने इस निर्जल उपवास रखने का पूरा पूरा प्रयत्न किया, तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। जो भी हम ये तपस्या करते हैं, केवल भगवान की खुशी के लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए। कोई एक बार पूछ रहा था कि ये कैसे भगवान है जो हमारे दुख में सुख लेते हैं, हमें भूखा रखते हैं, खुद खाते हैं, और हमको बोलते हैं हमें खुश करना है तो खाओ नहीं। तो भगवान बस एक मौका दे रहे हैं हमको, हम सबको, कि थोड़ी सी तपस्या करो, ज्यादा नहीं है, एक दिन नहीं खाएंगे तो कुछ ऐसी बड़ी दुर्घटना नहीं हो जाएगी, आसमान सर पर नहीं गिर पड़ेगा। हमारे आयु में हर दिन कितने बार खाते आए हैं, चार बार, पांच बार, रोज खाते हैं, बहुत खाते हैं, तो अगर एक दिन हमने नहीं खाया तो थोड़ा पेट को भी आराम मिल जाएगा। हम शरीर के हर भाग को आराम देते हैं, थक जाते हैं तो सो जाते हैं, जब आंखें थक जाती हैं तो आंख बंद कर लेते हैं, दिमाग थक जाता है तो सोचना बंद करते हैं, थोड़ा कुछ और मनोरंजन में चले जाते हैं, लेकिन पेट को कब आराम मिलेगा? एक बार सुबह का नाश्ता ले लिया और पेट अपना काम शुरू कर रहा है, जब तक कि पेट का काम समाप्त हुआ भी नहीं तब तक दोपहर का भोजन आ गया, और जब तक कि वो समाप्त भी नहीं हुआ कि शाम का नाश्ता आ गया, और उसके बाद वो समाप्त नहीं हुआ कि रात का भोजन आ गया, और बीच बीच में जो इधर उधर चबाते रहते हैं वो अलग बात है, और फिर तो सो गए, और सोने के समय तो पाचन शक्ति कम हो जाती है, और फिर सुबह सुबह चाहिए, उठने के बाद ही बस कुछ तो चाहिए। तो कम से कम भौतिक दृष्टि से भी देखा जाए तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो भगवान ने ये एक हमें मौका दिया है कि जल्दी से हम प्रगति करें, वो कह रहे हैं कि कोई ना कोई बहाना के समान है, ऐसा समझ लीजिए कि भगवान देख रहे हैं कि ऐसे कुछ एक पद्धति में बना दूं, ऐसे कोई अवसर मैं पैदा कर लूं जिससे कि बद्ध जीव मेरे पास जल्दी आ सके। तो उन्होंने ऐसे महीने के दो दिन बना दिए एकादशी, अपने अवतारों के आविर्भाव दिवस बना दिए कई, तो जिनमें हम भक्ति करके और अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से एकादशी के दिन पे और खास करके ये निर्जल एकादशी के दिन पे अगर हम पूरी तरह से उपवास रखेंगे तो बहुत लाभ हमें हो जाएगा। तो आज भी सब भक्तों से निवेदन है कि सभी कल प्रातःकाल 6 बजे तक कम से कम इस निर्जल उपवास को रखने का पूरा प्रयत्न करें, भगवान शक्ति देंगे। तो कौन है वैष्णव? तो दोस्त, रविवार पहले चैतन्य महाप्रभु के दो अलग अलग उपदेशों की चर्चा हुई थी। पहला उपदेश चैतन्य महाप्रभु का किनको दिया हुआ था, कहां पे दिया हुआ था? जगन्नाथपुरी में। किनको दिया था? कुलीन ग्राम के निवासी, विशेष करके सत्यराज खान और रामानंद बसु और अन्य भी कई थे। तो उन्होंने पूछा था कि हम तो गृहस्थ हैं और हम नहीं जानते हैं कि हमारी साधना क्या होनी चाहिए, हमारे कर्तव्य क्या होने चाहिए। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने उनको बताए थे, तीन चीजें बताई थी उनको, क्या करना चाहिए? कृष्ण सेवा, वैष्णव सेवा, हरिनाम संकीर्तन। और जब वैष्णव कौन है उन्होंने पूछा, अगर आप वैष्णव सेवा करना कह रहे हैं तो वैष्णव कौन है, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? जो एक बार केवल कृष्ण का नाम लेता है वो वैष्णव है। उसके अगले साल जब वही कुलीन ग्राम के निवासी वहां आए, दोबारा उन्होंने वही प्रश्न किए कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी साधना क्या है, कर्तव्य क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु फिर से कहा, वैष्णव सेवा, कृष्ण नाम। फिर से उन्होंने प्रश्न किए कि वैष्णव कौन है। उस समय महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? जो निरंतर कृष्ण का नाम लेता है वो वैष्णव है। तीसरे साल जब कुलीन ग्राम के निवासी आए जगन्नाथपुरी चातुर्मास के समय, फिर से उन्होंने यही प्रश्न किया और महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? जिसको देखकर ही अन्य लोग कृष्ण का नाम स्वाभाविक रूप से लेते हैं वो है वैष्णव। और फिर उन्होंने उनको समझाया, तरतम वैष्णव, वैष्णव तर और वैष्णव तम। उन्होंने बताया कि जो पहले श्रेणी में आता है, जो एक बार कृष्ण का नाम लेता है वो है वैष्णव, मतलब साधारण वैष्णव। जो निरंतर कृष्ण का नाम लेता है वो है वैष्णव तर, मतलब श्रेष्ठ वैष्णव। और जिसको देखते ही अन्य लोग कृष्ण का नाम लेने के लिए प्रेरित हो जाते हैं वो कौन है? वैष्णव तम, सर्वश्रेष्ठ वैष्णव। जब उन्होंने सनातन गोस्वामी को उपदेश दिया तो उन्होंने उनको श्रद्धा के बारे में बताया। अब जब चैतन्य महाप्रभु ने कुलीन ग्राम के निवासियों को वैष्णव के बारे में, वैष्णव के विभाजन, वैष्णव के अलग अलग स्तरों के बारे में चर्चा की, उपदेश दिया, तो किस दृष्टि से दिया? कृष्ण नाम के लेने की दृष्टि से दिया। जब सनातन गोस्वामी को उन्होंने उपदेश दिया तो उन्होंने किस दृष्टिकोण से विभाजन किया वैष्णवों में? श्रद्धा, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कौले सर्व कर्म कृत होए। कि श्रद्धा मतलब दृढ़ श्रद्धा, वो दृढ़ विश्वास कि अगर केवल हमने श्री कृष्ण की सेवा की तो क्या होगा, हमारे सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बहुत महत्वपूर्ण एक बात बताई श्रद्धा शब्द के बारे में, और कहा कि सब कुछ यहां पर श्रद्धा के ऊपर आधारित है। जहां श्रद्धा है वहां सब कुछ है। श्रद्धावान जन है भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ भक्ति श्रद्धा अनुसारी। तो उन्होंने कहा कि सब कुछ श्रद्धा के ऊपर आधारित है। अगर किसी की श्रद्धा ज्यादा है तो उत्तम है, किसी की थोड़ी कम है तो वो मध्यम है, और किसी की और भी कम है तो वो कनिष्ठ है। तो भक्ति का अधिकारी कौन होता है? श्रद्धावान जन सही भक्ति अधिकारी। केवल जो श्रद्धावान आदमी होता है वो भक्ति का अधिकारी व्यक्ति होता है। तो श्रद्धा मतलब क्या है? श्रद्धा मतलब कि ये समझना कि श्री कृष्ण ही परम सत्य है, श्री कृष्ण के अलावा और कोई सत्य नहीं है, और इन्हीं का शरण हम सबको लेना चाहिए। और इस प्रकार से वो बताते हैं कि श्रद्धा अनुसारी, उत्तम मध्यम और कनिष्ठ, ये तीन विभाजन बताए जाते हैं। तो इन तीन तरह के वैष्णवों की परिभाषा संक्षिप्त रूप में क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने? जहां तक उत्तम अधिकारी का प्रश्न है, शास्त्र युक्ते सुनिपुण दृढ़ श्रद्धावान, शास्त्र के ज्ञान में बड़ा निपुण है, शास्त्रों को अच्छी तरह से समझता है, उसके निचोड़ को, उसके निष्कर्ष को अच्छी तरह से समझता है, और जो विरोधी सिद्धांत है उनका खंडन कर सकता है, शास्त्रों के सिद्धांत का रक्षण कर सकता है, और साथ साथ उसकी श्रद्धा जो है बहुत दृढ़ है, सुदृढ़ है। तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कहते हैं, उत्तम अधिकारी। शय तारय संसार, जो सारे संसार को तार सकता है। और फिर मध्यम अधिकारी कौन है? शास्त्र युक्ति नहीं जाने शय मध्यम भागवत। तो जो जिसकी जो शास्त्रों में ज्ञान है, शास्त्रों की जो के ऊपर आधार पर तर्क करने की जो क्षमता है वो इतनी परिपक्व नहीं है, परंतु दृढ़ श्रद्धावान, उसकी श्रद्धा दृढ़ है, केवल शास्त्रों का ज्ञान थोड़ा कम है, तो सही मध्यम अधिकारी महाभाग्यवान, वो भी बड़ा भाग्यवान है। और तीसरा जो कनिष्ठ अधिकारी होता है, कनिष्ठ अधिकारी उसकी श्रद्धा बहुत कोमल रहती है। यहां श्रद्धा कोमल शय कनिष्ठ जन, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो कनिष्ठ अधिकारी व्यक्ति की पहचान है कि उसकी श्रद्धा हमेशा कोमल रहती है, लेकिन क्रमे क्रमे ते हो भक्त होइबे उत्तम, क्रम से अगर वो भक्ति करते रहेंगे तो वो भी उत्तम स्तर तक पहुंच पाएंगे। और इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि श्रद्धा के आधार पे भी वैष्णवों का विभाजन किया जा सकता है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि और एक दृष्टि से भी विभाजन किया जा सकता है वैष्णवों का, और वो क्या है? वो है रति और प्रेम। जितनी हमारी आसक्ति और प्रेम बढ़ गई है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उस हिसाब से कोई श्रेष्ठ माना जाता है, कोई सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तरतम्य। और फिर उन्होंने प्रमाण दिया इस बात के लिए श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद से दूसरे अध्याय में। प्रसंग यह है कि नारद मुनि द्वारका में आए हैं, वसुदेव जो कि श्री कृष्ण के पिता हैं उनका स्वागत कर रहे हैं, स्वागत करके उनसे कई प्रश्न पूछ रहे हैं, और उन प्रश्नों के उत्तर में नारद मुनि ने एक इतिहास उनको बताया है प्रमाण के तौर से। और ये इतिहास क्या है? बहुत प्राचीन इतिहास है, जबकि नव योगेंद्र जो कि परमहंस थे, जो कि महाराज ऋषभदेव के पुत्र थे, महाराज भरत के भाई थे, और जो कि सदैव परिव्रजकाचार्य होने के नाते घूमते रहते थे सारे ब्रह्मांड में सबका उद्धार करने के लिए, वो महाराज निमि के दरबार में आए और महाराज निमि ने उनसे कई प्रश्न किए, 9 प्रश्न किए, वास्तव में 9 तरह के प्रश्न किए, और हर एक योगेंद्र ने एक एक तरह के प्रश्न का उत्तर दिया। तो महाराज निमि का एक प्रश्न ये था कि वैष्णव कौन है, वैष्णव के लक्षण क्या है, वैष्णव का व्यवहार कैसे होता है, वैष्णव कैसे बोलता है, उसके कौन से कर्तव्य होते हैं, कौन से धार्मिक क्रियाओं का पालन करता है वैष्णव, और कितने तरह के वैष्णव होते हैं, वैष्णवों के स्तर क्या होते हैं। तो महाराज निमि ने जब ये प्रश्न किए तो श्री हवि नाम के एक नव योगेंद्र ने उनके इस प्रश्न का उत्तर दिया। तो आइए सुनते हैं, इसकी पुष्टि वास्तव में चैतन्य महाप्रभु भी सनातन गोस्वामी को करते हैं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवत भावमात्मनः भूतानि भगवतात्मनि एष भागवतोत्तमः। उन्होंने उत्तर दिया, श्री प्रभुपाद का अनुवाद है। श्री हवीर ने कहा, अत्यंत बढ़ा चढ़ा या उत्तम भक्त हर वस्तु के भीतर समस्त आत्माओं के आत्मा भगवान श्री कृष्ण को देखता है, फलस्वरूप वह हर वस्तु को भगवान से संबंधित देखता है और यह समझता है कि प्रत्येक विद्यमान वस्तु भगवान के भीतर नित्य स्थित है। तो श्री हवि यहां पर उत्तम भक्त की पहचान करा के दे रहे हैं हमसे, और वो कहते हैं कि उत्तम भक्त वो है जिसकी दृष्टि पूरी तरह से आध्यात्मिक है। उत्तम भक्त को अपने वेश पोशाक से, अपने बाहरी रूप से, अपने जाति से, अपने वर्ण से, आश्रम से नहीं पहचाना जा सकता, लेकिन एक उत्तम भक्त को उनकी दृष्टि से पहचाना जा सकता है कि उनकी दृष्टि कितनी विशाल है। विशाल दृष्टि का मतलब यह नहीं है कि जिसके आंखों में चश्मा नहीं है और जो बिल्कुल सही दूर की चीजें भी देख सकता है, इन आंखों की बात नहीं है, शास्त्र चक्षु की बात चल रही है, शास्त्रों के ज्ञान के ऊपर आधारित जो दृष्टि है उसको शास्त्र चक्षु कहते हैं। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति सब जगह भगवान को देखता है, सब कुछ भगवान में देखता है, सब कुछ भगवान का समझता है, ये सारी संपत्ति सब भगवान की है, सब कुछ भगवान में है, भगवान से विभिन्न, भगवान से स्वतंत्र कुछ भी नहीं है, ये उत्तम अधिकारी है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 6 अध्याय में बताते हैं, योमाम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मई पश्यति तस्याम न प्रणश्यामी सचमे न प्रणश्यति। वो कहते हैं कि जो व्यक्ति योमाम पश्यति सर्वत्र, जो मुझे सब जगह देखता है, और सर्वम च मई पश्यति, सब कुछ मुझमें देखता है, और ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कभी खो नहीं जाता हूं और वो मेरे लिए कभी खो नहीं जाता है। दूसरे शब्दों में भगवान श्री कृष्ण यहां पर यह बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति सदैव योमाम पश्यति सर्वत्र, सदैव मुझे देख सकता है, वो उत्तम भक्त है। हर चीज को मुझ में देखता है, सर्वभूतस्थमात्मनम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह मुझको देखता है। तो फिर यह प्रश्न आता है कि क्या यह परिभाषा है भगवान की, उत्तम भक्त की, कि वो सब जगह कृष्ण का रूप देखेगा, हर क्षण में कृष्ण 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 देखेगा, आंख उठाएगा यहां तो कृष्ण का रूप देखेगा बांसुरी बजाते हुए, वहां देखेगा तो कृष्ण का रूप देखेगा गायों को चराते हुए, कि कुछ भौतिक चीज देखेगा ही नहीं, केवल कृष्ण का रूप देखेगा सब जगह। प्रभुपाद समझाते हैं कि जब ऐसा उत्तम भागवत इस भौतिक प्रकृति में अपने आंखों से देखता है सब कुछ, अवश्य अलग अलग विभिन्न प्रकार के रूप आकार देखता है, परंतु वो समझता है कि ये कृष्ण की शक्ति है। हर चीज को कृष्ण से संबंधित देखता है, किसी को कृष्ण से स्वतंत्र नहीं देखता। हर चीज को देखकर उसे कृष्ण का स्मरण आता है। प्रभुपाद ने इसके लिए बहुत सरल उदाहरण दिया कि एक मां होती है, अपने बच्चे के छोटे छोटे जूते देखकर या उसका खिलौना देखकर उसको क्या स्मरण आता है? बच्चे का स्मरण आता है। हालांकि बच्चा उस समय घर के बाहर गया हुआ है, परंतु बच्चे की कोई चीज को देखकर उसे बच्चे का स्मरण आता है, क्योंकि ये बच्चे के जूते हैं, ये बच्चे के खिलौने हैं। उसी प्रकार से उत्तम अधिकारी व्यक्ति जानता है कि यह संसार में सभी कुछ भगवान का है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि भगवान की संपत्ति नहीं है। और इसलिए जब वो अपनी आंखें इधर उधर फैलाता है, सब जगह देखता है, तो उसको केवल भगवान का स्मरण ही होता है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अगर योमाम पश्यति सर्वत्र, कि भगवान को हर जगह देखना, इसका मतलब हम ये समझ लें कि भगवान का रूप हमें हर समय हर क्षण देखना चाहिए, तो इस न्याय के आधार पर हम नारद मुनि को, सुखदेव गोस्वामी को, वेद व्यास को भी उत्तम भक्त नहीं कह सकते। तो उनको हम उत्तम अधिकारी फिर भी क्यों कहते हैं? क्योंकि उनकी दृष्टि ऐसे थी कि वो सब जगह जब हर चीज को देखते थे तो कृष्ण से संबंध को देखते थे, और दूसरी बात कि उनको कृष्ण का दर्शन करने के लिए इतनी तीव्र इच्छा थी कि वास्तव में वो कृष्ण का दर्शन करने के लिए योग्य थे, इस काबिल थे कि कृष्ण का दर्शन करें। अब कृष्ण उनको दर्शन दें या न दें वो कृष्ण के ऊपर, लेकिन इस काबिल थे वो। क्यों थे? क्योंकि भगवान की भक्ति करके उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध हो गया था। भगवान का दर्शन करने की आतुरता उनके अंदर इतनी तीव्र थी, इतना लोभ था उनका भगवान का दर्शन करने के लिए, कि वास्तव में भगवान को देखने के लिए वो योग्य हो गए, पात्र हो गए। जैसे कि एक लोभी व्यक्ति, वो हर जगह यही देखता है कि कैसे कमाए, पैसे कमाए जाए। अभी मंदिर में भी आएगा अगर कोई ऐसा ज्यादा लोभी व्यक्ति जो भौतिकवादी है, देखिएगा, अरे ये मंदिर के लकड़े देखो, इसको बेचेंगे तो कितना पैसा मिलेगा, आजकल तो ये लकड़े तो बहुत महंगा है, कहीं मिलता नहीं है, इसको बेचेंगे कितना मिलेगा, अरे यहां कितना रेट चल रहा होगा जमीन का, ये बिल्डिंग अभी हमें मिल जाता तो हमको कितना पैसा मिल जाता। तो जहां भी जाता है उसकी दृष्टि वही रहती है, पैसा पैसा। उसको क्या दिखाई देता है? पैसा पैसा दिखाई देता है। इसका मतलब यह नहीं कि बिल्डिंग के जगह उसको रुपए के नोट दिखाई देते हैं, लेकिन वो देखता है उससे, पैसे से संबंध देखता है। इसका मूल्य क्या है, इसका मूल्य क्या है, ये कर ऐसे करूंगा तो कितने पैसे मिलेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि वो सब जगह पैसे को देखता है। ठीक उसी प्रकार से एक उत्तम भागवत, उत्तम अधिकारी व्यक्ति होता है, ये जरूरी नहीं है कि वो भगवान का रूप ही हर क्षण हर समय देखता रहे। बीच बीच में भगवान उसे दर्शन दे सकते हैं, वो अलग बात है, परंतु उसकी भक्ति की, दर्शन करने की जो तीव्रता है उसका महत्व माना जाता है। और इसलिए जो उत्तम भागवत भक्त होते हैं उनकी विशेषता यही होती है कि वो किसी भी चीज को भगवान से अलग नहीं समझते हैं। प्रभुपाद एक बार जब एक बहुत गरीब लोगों के ठिकाने में गए थे, तो वहां पर भी वो कहने लगे, ये तो वैकुंठ है। हालांकि भौतिक दृष्टि से बिल्कुल वैकुंठ नहीं लग रहा था, गंदी जगह थी, लोग भी गंदे थे, लेकिन उनको वैकुंठ इसीलिए लगा कि उन्होंने भौतिक शक्ति का संबंध शक्तिमान श्री कृष्ण से स्पष्ट रूप से देखा। बल्कि जब वो विदेश में जाते कभी कभी, जहां की इतना सब कुछ भौतिक दृष्टि से स्वच्छ है, ऐश्वर्यशाली है, शानदार है, लोग वहां भी कितने सुंदर हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, गाड़ी मोटर में सब घूमते हैं, फिर भी प्रभुपाद देखते थे कि ये वैकुंठ नहीं है। हालांकि वो जानते ये भी भगवान की शक्ति है, तो वैकुंठ नहीं है क्यों बोलते थे, क्योंकि यहां लोग भूल गए हैं, माया जाल में फंस के वो केवल संसार के भोग में लगे हुए हैं। इसलिए उत्तम भक्त जो होते हैं उनकी दृष्टि ऐसी रहती है, हमेशा भगवान से संबंध हर चीज का जोड़ लेते हैं। आगे चल के हवीर, श्री हवीर मध्यम भक्त की परिभाषा करने वाले हैं। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यह करोति स मध्यमः। अनुवाद। द्वितीय कोटि का भक्त जो मध्यम अधिकारी कहलाता है, भगवान को अपना प्रेम अर्पित करता है, वह भगवान के समस्त भक्तों का निष्ठावान मित्र होता है, वह अबोध अज्ञानी व्यक्तियों पर दया करता है और उनकी उपेक्षा करता है जो भगवान से द्वेष रखते हैं। तो यहां पर चार तरह के लोगों का वर्णन है। ईश्वर तत् अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु। ईश्वर भगवान तत् अधीनेषु, तत् मतलब भगवान, अधीन मतलब जो उनके अधीन गए, उनके आश्रय में गए, उनके शरण में गए हैं, मतलब कौन? भक्त। और तीसरा है बालिशेषु। बालिशेषु मतलब जो अबोध हैं, जो बच्चे नहीं, मतलब बच्चों के समान, मतलब उनके आध्यात्मिक ज्ञान विकसित नहीं है, लेकिन फिर भी मासूम है, द्वेषी नहीं है, अज्ञानी है परंतु मासूम है। ये तीसरे श्रेणी हो गए। और चौथे हैं द्विषत्सु, जो द्वेषी लोग हैं, जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं। तो हवि, श्री हवि यहां बता रहे हैं कि मध्यम भक्त वो होता है जो इन चारों में से भेद करता है और उनका व्यवहार जो है चारों से भिन्न भिन्न होता है। प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। तो ईश्वर या भगवान के प्रति उसकी भावना प्रेम की रहती है, क्योंकि वो समझता है कि भगवान ही हमारे जीवन के केंद्र बिंदु होने चाहिए, हम सब भगवान के अंश हैं और भगवान की कृपा से ही हम सब जी रहे हैं। वो अच्छी तरह से भगवान के अस्तित्व को जानता है, भगवान से प्रेम स्थापित करने की चेष्टा करता है। और दूसरे रहे तत् अधीनेषु, उनके भक्त, उनके प्रति वो मैत्री की भावना बढ़ाने की चेष्टा करता है, सब भक्तों से बड़े प्रेम से रहता है, उनसे मित्रता का संबंध स्थापित करता है, क्योंकि वो जानता है कि वैष्णव कितने महत्वपूर्ण हैं, कि वैष्णवों के बिना हम भक्ति में बिल्कुल प्रगति नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें वैष्णवों के अधीन रहना चाहिए, तब हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो मध्यम अधिकारी इस बात को अच्छी तरह से जानता है और वैष्णवों के साथ द्वेष नहीं करता, वैष्णवों के साथ अच्छी मित्रता की भावना रखता है। तीसरी बात, जो बालिशेषु, जो मासूम है, अबोध है, अज्ञानी है, उनके प्रति क्या संबंध रखता है मध्यम अधिकारी? कृपा, उनके ऊपर कृपा करता है। कैसे कृपा करता है? उनको कृष्ण भक्ति का ज्ञान देकर, उनको कृष्ण भक्ति में लाकर, और यह उसकी सबसे बड़ी कृपा होती है। और चौथी बात, द्विषत्सु, जो लोग द्वेषी होते हैं, भक्तों से, भगवान से द्वेष करते हैं, मध्यम अधिकारी भक्त ऐसे लोगों से कैसे व्यवहार करता है? यहां पर बताया हुआ है उपेक्षा, उनकी उपेक्षा करता है, ज्यादा उनको ध्यान नहीं देता बल्कि उनसे दूर ही रहता है, पास में भी नहीं जाता। तो ये पूछा जा सकता है कि अगर वो सच्चा भक्त है भगवान का, तो ऐसे उपेक्षा करना उसके लिए उचित नहीं है? उसे चाहिए कि वो भी इसके ऊपर कृपा बरसाए। जो अज्ञानी हैं, जो अबोध हैं, उनके ऊपर अगर कृपा बरसाने के लिए मध्यम अधिकारी भक्त तैयार होता है, तो ऐसे द्वेषी लोगों के ऊपर क्यों नहीं, ये प्रश्न आता है। इसके लिए वैष्णवाचार्यों ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ऐसे द्वेषी लोगों के लिए उपेक्षा ही सही औषध है, दवाई है। क्यों? क्योंकि अगर उनके ऊपर कृपा हम डालने के लिए जाएंगे, उनको भगवान के बारे में कुछ बोलने के लिए जाएंगे, तो उनका द्वेष इतना होता है कि वो निंदा करना शुरू कर देते हैं और अनप शनप बकना शुरू कर देते हैं भगवान के प्रति, भक्तों के प्रति, मंदिर के प्रति, और फिर उसका और भी पतन हो जाएगा। तो हम उसके पतन होने में हम शामिल हो जाएंगे, तो दोनों के लिए अच्छा नहीं है। फिर हम भी उससे ज्यादा द्वेष करेंगे, हम भी उसके विरुद्ध बहुत कुछ बोलेंगे, तो बीच में बहुत द्वेष निर्माण हो जाएगा। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, मध्यमाधिकारी जब द्वेषी लोगों से उपेक्षा करता है तो इस द्वेष से दूर रहता है, दोनों को द्वेष से बचा देता है और उसके पतन से भी उसको बचा देता है। वास्तव में अनेक जैसे महाभागवत हुए, जैसे वेद व्यास, शुकदेव गोस्वामी, भरत महाराज, इन्होंने भी बिना भेद किए हुए अपनी कृपा सबके ऊपर नहीं बरसाई। वो भी देखते थे कि योग्य पात्र व्यक्ति कौन है। तो उसी प्रकार से उपेक्षा ये भी एक मध्यम अधिकारी भक्त की कृपा का ही एक रूप है। हम ये नहीं समझना चाहिए कि ये कोई द्वेष का एक रूप है, नहीं, कृपा का ही रूप है ये। और इस प्रकार से धीरे धीरे से कोई संभावना है कि ये द्वेषी व्यक्ति आज नहीं तो कल किसी भी जन्म में भक्तों के करीब आ जाए। जब द्वेषी लोग ज्यादा भगवान के भक्तों की निंदा करेंगे तो भक्ति में आने के लिए उनका पथ जो है वो और भी कठिन हो जाएगा, और भी भगवान से दूर होते जाएंगे। इसके लिए उनकी भलाई के लिए भी नहीं है। तो जो मध्यम अधिकारी भक्त होते हैं वो ऐसे चार तरह के लोग, चार तरह के वर्गों से अलग अलग व्यवहार करते हैं। जो उत्तम भक्त होते हैं वो किसी में भेदभाव नहीं करते, वो सबको भक्त समझते हैं, सब वैष्णव हैं। अगर कोई व्यक्ति उनके प्रति द्वेष करने के लिए भी आ जाए, उनको मारने के लिए भी आ जाए, तो वो उनसे प्रेम ही करेंगे, जैसे हरिदास ठाकुर थे। जब काजी के, चांद काजी नवाब हुसैन शाह के सिपाहियों ने उनको 21 बाजारों में ले जाकर पिटाई की चाबुक से, छड़ी से, और इतना मार रहे थे ये लोग हरिदास ठाकुर को, खुद थके जा रहे थे, परंतु हरिदास ठाकुर को कुछ नहीं हो रहा था। जब हरिदास ठाकुर ने देखा कि ये सब लोग घबरा रहे हैं कि अगर ये व्यक्ति मरेगा नहीं तो हमारी मृत्यु हो जाएगी, जो नवाब शाह है हुसैन शाह वो हमें मृत्यु दंड देगा, तब हरिदास ठाकुर के मन में उनके प्रति करुणा की भावना जागृत हो गई। उन्होंने सोचा कि मेरी वजह से इनको कष्ट पहुंचता हो ये ठीक नहीं है, तो उन्होंने समाधि की स्थिति में अपने आप को स्थित कर दिया। और इन सिपाहियों ने सोचा कि हरिदास ठाकुर की मृत्यु हो गई है, और फिर उनको गंगा जल में फेंका गया, और गंगा जल में बहते बहते उनका शरीर नीचे चला गया, लेकिन वहां पुनः उनकी चेतना विकसित हो गई, प्रकट हो गई, और तैरते हुए वापस वहां पर आ गए। और तब नवाब हुसैन शाह को पता चला कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। कहने का मतलब यह है कि हरिदास ठाकुर ने उत्तम अधिकारी होने की वजह से ऐसे लोगों के प्रति बिल्कुल द्वेष नहीं किया, बल्कि उनके ऊपर इतनी कृपा बरसाई। ये है उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी भेदभाव नहीं करता कि कौन भक्त है कौन अभक्त है, वो सबको भगवान का अंश समझता है। लेकिन हम इनकी नकल नहीं कर सकते। ऐसे कितने महाभागवत हैं जो कि शेर सिंह के साथ भी जाकर खेला करते थे। ऐसे नित्यानंद प्रभु के भी एक भक्त थे, शिष्य थे, जो कि कभी कभी प्रेम में प्रेमावेश में आके एक शेर को जाके थप्पड़ मारते थे प्रेम में आके, लेकिन हम वो नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी में ये अंतर होता है। उत्तम अधिकारी भेद नहीं करता, मध्यम अधिकारी भेद करता है, बल्कि उसके लिए भेद करना आवश्यक है। और जो द्वेषी लोग हैं उनके प्रति उपेक्षा करने का और एक कारण ये है कि ऐसा द्वेष करने से जो मध्यम अधिकारी भक्त है अपने आप को प्रदूषण से, पतन से बचा सकता है। नहीं तो क्या हो सकता है, संभावना ये है कि ऐसे द्वेषी लोगों का संग करके उसे संग देने के बजाय उसका संग हम ले सकते हैं। तो हमारे भक्ति के विचार उसके अंदर आने के बजाय उसके नास्तिक विचार हमारे अंदर आ सकते हैं, अगर हम उतने शक्तिशाली नहीं हो तो। इसलिए मध्यम अधिकारी व्यक्ति को चाहिए कि ऐसे द्वेषी लोगों से वो दूर ही रहे, बच के रहे। उसमें उसकी भी सुरक्षा है, उसकी भलाई है, और उस दूसरे द्वेषी व्यक्ति की भी भलाई है। इस प्रकार से श्री हवि ने बताया कि मध्यम अधिकारी स्तर में व्यक्ति की दृष्टि क्या होती है और कैसे उसका बर्ताव होता है। और आगे चल के श्री हवि कनिष्ठ या प्राकृत अधिकारी के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं।
अर्चायामेव हरये पूजाम यह श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः।
जो भक्त मंदिर में अर्चा विग्रह की श्रद्धा पूर्वक पूजा में लगा रहता है किंतु अन्य भक्तों के प्रति या सामान्य जनता के प्रति उचित आचरण नहीं करता, वह प्राकृत भक्त अर्थात भौतिकवादी भक्त कहलाता है और निम्नतन पद पर स्थित माना जाता है। तो कनिष्ठ भक्त को प्राकृत भक्त भी कहते हैं। प्राकृत मतलब प्रकृति, इस भौतिक जगत से संबंधित प्राकृत भक्त। तो उसके लक्षण क्या होते हैं? प्राकृत भक्त के लक्षण होते हैं सबसे पहली बात कि वो अर्चा विग्रह की सेवा श्रद्धापूर्वक करता है। मतलब उसको मालूम है कि श्रद्धा के भगवान के अर्चा विग्रह है और भगवान में कोई अंतर नहीं है, ये ज्ञान है उसको। परंतु उसको ये नहीं मालूम है कि भगवान अर्च्य विग्रह के सिवाय और कोई जगह भी है, कि भगवान सब जगह हैं, ये उसको नहीं मालूम। भगवान केवल मेरे मंदिर में है, केवल मेरे मूर्ति में है बस। और क्योंकि इसकी दृष्टि इतनी विशाल नहीं है, इसलिए कैसे लोगों से बर्ताव करना वो नहीं जानता है। भक्तेषु च अन्येषु, भक्तों से भी अच्छी तरह से व्यवहार नहीं करता वो, और अन्यों से भी अच्छा व्यवहार नहीं करता। इसका मतलब है, देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भक्त को अगर पहचानना है तो उसके व्यवहार से पहचाना जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहता कि मैं अच्छी तरह से जप करता हूं, मैं इतनी तपस्या करता हूं, मैं बहुत पढ़ाई करता हूं, अच्छी तरह से सेवा करता हूं, अच्छा विग्रह की सेवा करता हूं वगैरह, परंतु उसका बर्ताव वैष्णवों के साथ ठीक नहीं है, अन्यों के साथ भी ठीक नहीं है, तो हमें समझना चाहिए कि वो एक आगे बढ़ा हुआ भक्त नहीं है। अगर वास्तव में हम वैष्णव बने हैं तो वो वैष्णवता हमारे व्यवहार में प्रकट होना चाहिए, नहीं तो हम सच्चे ऊंचे वैष्णव नहीं कहलाते हैं। प्राकृत भक्त के और लक्षण होते हैं कि वो दूसरे जगह भगवान को देखता नहीं है, सोचता है कि केवल मेरे मूर्ति में ही भगवान है, इसलिए अपने आप को ही बड़ा भक्त समझता है और अपने से अलावा और कोई अच्छे प्रगतिशील भक्त हो सकते हैं, ऊंचे भक्त हो सकते हैं, ये सोच भी नहीं सकता है वो। और इसलिए वो ऊंचे भक्तों को पहचान नहीं सकता, और क्योंकि वो पहचान नहीं सकता कई बार उनकी निंदा भी कर बैठता है, क्योंकि उसकी दृष्टि भी भौतिक है और उस प्रकार से उसके मन में घमंड भी हो जाता है कि मैं इतना अच्छा भक्त हूं। उसको भक्ति के सिद्धांत का पूरी तरह से ज्ञान नहीं होता, वो सोचता है कि भक्ति जो है ये हमारे धार्मिक जीवन का एक अंश है और ये भक्ति जीवन का एक और कार्य है। जैसे हम कोई व्यवसाय करता है कोई आदमी, और फिर कोई अपने परिवार को संभालता है, फिर भक्ति भी करता है, उसी प्रकार से भक्ति जो है ये हमारे जीवन का एक विभाग है। वो ये नहीं जानता कि भक्ति हमारे जीवन का विभाग नहीं है, भक्ति हमारे जीवन का सब कुछ है। हमारे हर एक जीवन के विभाग में भक्ति का प्रभाव, भक्ति का असर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका मतलब है कि हमारी दृष्टि अभी तक बराबर नहीं है। और इसलिए क्योंकि भक्ति का सिद्धांत उसको अच्छी तरह से नहीं मालूम है, तो भक्ति के अलावा और भी ऐसे कई चीजों को वो अच्छा समझता है कि ये भी आनंद लेने की चीजें हैं। हो सकता है वो मंदिर की पूजा करता हो, अपने घर में भी मंदिर में पूजा पाठ करता हो, परंतु जाके होटल में फिर खाने में बहुत आनंद लेता हो। हो सकता है कि इधर उधर प्रजल्प करने में, सिनेमा देखने में भी आनंद लेता हो, ऐसे भी संभव है। तो इस प्रकार से जो प्राकृत भक्त होते हैं, भौतिकवादी भक्त होते हैं, सही पूर्ण ज्ञान उनके मन में नहीं होता। लेकिन अगर इन्होंने अपने आप को वैष्णव अपराध से बचा लिया, जो कि बहुत बड़ा अड़चन हो जाएगा उनकी भक्ति में, और अगर उन्होंने सारे नियमों का पालन किया, वैष्णवों का संग अच्छी तरह से किया, तो वो भी शनै शनै उत्तम भक्त के स्तर तक भी पहुंच सकते हैं। हो सकता है इस जन्म में नहीं, परंतु अगले जन्म में कभी भी। इस प्रकार से श्री हवि ने इन तीन प्रकार के भक्तों का वर्णन किया, और ये भक्ति या दृष्टि के आधार पर किया हुआ है। तो इस बात की पुष्टि जो है चैतन्य महाप्रभु ने भी सनातन गोस्वामी को किए। यही श्लोक, इन्हीं तीन श्लोकों को बोलकर उन्होंने समझाया। तो तीन वर्ग हुए, उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी। तो अब ये बताइए कि जो नव योगेंद्रों ने महाराज निमी को बताया, इन तीन श्रेणियों में से उत्तम अधिकारी के लक्षण क्या होते हैं? हर जगह भगवान को देखता है, मतलब क्या है कि भगवान के रूप अलग अलग सब जगह देखता है, हर अणु में, हर चीज को भगवान से संबंधित देखता है। किस रूप में संबंधित है हर एक वस्तु भगवान से? शक्ति, हर एक वस्तु भगवान की शक्ति है। इसलिए जब वो जहां भी देखता हो उसको किसका स्मरण आता है? भगवान का स्मरण आता है। कोई उदाहरण इसके लिए? मां और बच्चे का। मां अपने बच्चे के खिलौने इत्यादि देखती है तो बच्चे का स्मरण करती है। वैसे ही उत्तम अधिकारी भी हर चीज को देखकर भगवान का स्मरण करता है। तो किसी भी वस्तु को भगवान से स्वतंत्र नहीं समझता, भगवान से भिन्न नहीं समझता। ये उसका गुण है, ये इसका लक्षण है। और क्या है ऐसे उत्तम अधिकारी की दृष्टि में? लेकिन भगवान का दर्शन उसे सब जगह करना चाहिए रूप में, जरूरत है? जो व्यक्ति हर क्षण हर जगह भगवान के रूप को देखता है वही उत्तम अधिकारी है? नहीं। फिर शक्ति, ये तो बात हो गई, आपने कह दिया, और दूसरी बात क्या है? भगवान का दर्शन करने के लिए योग्य है वो? क्यों योग्य है? वो भगवान का दर्शन करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए इतनी लालसा है, इतनी आतुरता है, इतनी तीव्र इच्छा है कि वही तीव्रता उनको भगवान का दर्शन करने के लिए योग्य बनाती है। और जब इस योग्य वो हो जाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि वो उत्तम अधिकारी हो गए। अब ऐसे उत्तम अधिकारी व्यक्ति को भगवान कभी आकर दर्शन दें भी या नहीं भी, या देकर फिर ओझल हो जाएं, वो भगवान के हाथ में है। परंतु अगर हम सोचें कि केवल 24 घंटे भगवान का दर्शन करते रहना हर अणु में, तो वैष्णवाचार क्या समझाते हैं? फिर कौन उत्तम अधिकारी नहीं कहलाएगा? नारद मुनि, सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास, फिर कोई भी उत्तम अधिकारी शायद नहीं कहलाएगा। इस संदर्भ में प्रहलाद महाराज ने भी कहा था ना, हिरण्यकश्यप ने पूछा कहाँ है तुम्हारा भगवान? कहा सब जगह है। सब जगह है तो कहाँ इस खंभे में है? है। और फिर उस खंभे में से वास्तव में प्रहलाद के बात को सच्चा बनाने के लिए दर्शन होता था, कभी नहीं होता था। जब होता था तो खुशी के मारे वो नाचने लगते थे, रोने लगते थे, उनके रोंगटे खड़े हो जाते थे। और कभी कभी जब भगवान ओझल हो जाते, बिल्कुल उदास हो जाते कि भगवान चले गए। इसका मतलब यह है कि प्रहलाद महाराज भी सब जगह 24 घंटे भगवान का रूप नहीं देखते थे, परंतु वो स्तर उनका था, क्योंकि आखिर भगवान उनको बचाने के लिए विशेष वैकुंठ से चले आए। तो ये है उत्तम अधिकारी के लक्षण। और एक बात क्या है कि उत्तम अधिकारी सभी को समान दृष्टि से देखता है, भेदभाव नहीं करता है, और यहां तक कि उनसे द्वेष करने वाले व्यक्तियों के ऊपर भी कृपा करता है। उदाहरण हरिदास ठाकुर। तो ये हुए उत्तम अधिकारी की बात। अब मध्यम अधिकारी के लक्षण क्या होते हैं? उत्तम अधिकारी भेदभाव नहीं करता, परंतु मध्यम अधिकारी क्या भेदभाव करता है? करता है। किस तरह का भेदभाव करता है? ये इस प्रांत का है, वो उस प्रांत का है, ये इस भाषा ये भाषा बोलता है, वो भाषा बोलता है, तो हम इससे दोस्ती करेंगे, उससे नहीं करेंगे, इस जाति का है, उस देश का है, ऐसा भेदभाव करता है? नहीं। फिर कैसा भेदभाव करता है? चार वर्ग हैं, उनका व्यवहार चार वर्गों से अलग अलग होता है। पहला वर्ग कौन सा है? ईश्वर या भगवान। भगवान के प्रति कैसा व्यवहार? प्रेम का व्यवहार। दूसरा वर्ग भक्तों का, जो भगवान के आश्रित हैं, उनके प्रति क्या व्यवहार? मैत्री भावना। मित्र बनते हैं सारे भक्तों से, इसलिए हम देखते हैं कि जब इस्कॉन के भक्त जहां भी जाते हैं, दूसरे इस्कॉन के भक्त मिल जाते हैं, जल्दी से दोस्ती हो जाती है। ये तो बाहर के वाले लोगों से दोस्ती करना बहुत कठिन होता है, किस तरह के लोग होंगे, क्या होंगे, पता नहीं चलता, लेकिन इस्कॉन भक्त है समझिए, जल्दी से एक मिनट में दोस्ती हो जाती है। मैत्री की भावना, ये हुई दूसरा वर्ग। तीसरा वर्ग जो बाल शेष, जो अज्ञानी होते हैं, परंतु के मासूम होते हैं, द्वेषी नहीं होते हैं, ऐसे लोगों के प्रति क्या व्यवहार रहता है मध्यम अधिकारी का? कृपा, दयालु रहते हैं। किस रूप में दया प्रकट होती है? उनको पैसे दान देना। किस तरह से दया प्रकट होता है? भक्ति प्रदान करना। ऐसे जो अबोध लोग होते हैं उनके ऊपर मध्यम अधिकारी कृपा दिखाते हैं, उनको कृष्ण भक्ति का भेंट प्रदान करके। और चौथा वर्ग द्विषत्सु, जो द्वेषी लोग हैं, उनके प्रति क्या व्यवहार होता है? उपेक्षा करना। तो उपेक्षा क्यों करना चाहिए? क्या उपेक्षा करने से क्या नुकसान होता है या क्या फायदा होता है? अगर वो प्रचार करने जाएगा उस द्वेषी व्यक्ति को, वो तो और भी बढ़ा चढ़ा के भगवान के प्रति कुछ अनप शनप बकेगा, वो भगवान की निंदा करेगा, भक्तों की निंदा करेगा, उससे उसका पतन और भी ज्यादा हो जाएगा और उसका द्वेष बढ़ जाएगा, और जो भक्त उसको प्रचार करने गया है उसका भी द्वेष बढ़ जाएगा। अरे तुम मूर्ख हो, तुम जानते नहीं हा? मैं तुम्हें शाप देता हूं। तो दोनों का मन विचलित हो जाएगा, दोनों में जो शत्रुता वैर की भावना निर्माण हो जाएगी। इसलिए दोनों के लिए अच्छा है और ये सही औषध है उसके लिए। और एक कारण क्या है कि ये उपेक्षा मध्यम अधिकारी के लिए अच्छा क्यों है, वो द्वेषी व्यक्ति का रंग कहीं उसके ऊपर ना आ जाए। जैसा संग वैसा रंग कहते हैं ना, क्योंकि मध्यम अधिकारी है निष्ठावान भक्त परंतु इतना श्रद्धावान नहीं है कि द्वेषी लोगों का संग करके प्रभावित न हो जाए। तो ऐसे द्वेषी लोगों का संग प्रचार के नाम से करके करके कहीं ऐसे न हो जाए कि उसकी श्रद्धा ही कम हो जाए, कि वही डावाडोल हो जाए, ऐसा ना हो। इसलिए अपने ही सुरक्षा के लिए मध्यम अधिकारी को चाहिए कि ऐसे द्वेषी लोगों से दूर रहे। कोई उदाहरण कि कई ऐसे लोग थे जो अपनी कृपा बिना भेदभाव किए नहीं बरसाते थे, कई नाम दिए, भरत महाराज, सुखदेव गोस्वामी, वेद व्यास। अब वास्तव में कभी कभी जब उत्तम अधिकारी प्रचार करने के लिए आते हैं तो वो मध्यम अधिकारी के स्तर में उतरते हैं, मध्यम अधिकारी के स्तर से होकर वो प्रचार करते, नहीं तो प्रचार क्या करेंगे आप? प्रचार किसको कर पाएंगे? जो भक्त नहीं है उसको प्रचार करेंगे ना? देखो कृष्ण भगवान है। अगर आप सोचेंगे कि सभी लोग भक्त हैं तो उसको क्या बताएंगे कि देखो कृष्ण भगवान है? तो जब उत्तम अधिकारी को प्रचार करना होता है तो मध्यम अधिकारी के स्तर में आके उसको ऐसे भेदभाव करना पड़ता है। उसकी दृष्टि वैसे है कि वो आत्मा की दृष्टि से देखता है, परंतु प्रचार हेतु ऐसे भेदभाव वो करता है। और फिर कनिष्ठ अधिकारी, उसके क्या लक्षण होते हैं? श्री हवि क्या बताते हैं? दो चीज बताते हैं श्री हवि भागवत में कनिष्ठ अधिकारी के गुणों के बारे में। अर्च्य विग्रह की सेवा कैसे करता है? श्रद्धा से करता है, परंतु भक्तों के प्रति और अन्यों के प्रति भी व्यवहार कैसा होता है? ठीक नहीं रहता है। दो चीजें बताई हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है कनिष्ठ अधिकारी के बारे में? पहला तात्पर्य क्या है कि भगवान को केवल अर्चा विग्रह में देखता है, वो भगवान सब जगह है उसको नहीं मालूम, इसलिए बोलेगा मेरा भगवान, तुम्हारा भगवान और बोलेगा कि यही मेरा भगवान है, यही सब कुछ है, भगवान यही है बस। उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, पहला तात्पर्य है ये। दूसरा तात्पर्य क्या है कनिष्ठ अधिकारी के बारे में? वैष्णव के प्रति अपराध करता है। हाँ, क्यों करता है? लेकिन भक्ति के सिद्धांत, हाँ, अपने आप को उत्तम भक्त समझता है क्योंकि सोचता है भगवान यही है, तो अपने आप को अच्छा समझता है भक्त और दूसरे क्या भक्ति को जाने, ऐसे सोचता है मेरे जैसा कौन अच्छा भक्त हो सकता है, और फिर ऐसे घमंड में वो भक्तों की निंदा करता है। हो सकते उत्तम अधिकारी को भी न पहचान पाए और उनकी भी निंदा करे, ये भी संभावना है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात क्या है कनिष्ठ अधिकारी के बारे में जो अब बताया? हाँ, भक्ति के साथ साथ वो इंद्र तृप्ति भी करता है। क्यों? क्योंकि उसकी भक्ति की समझ बराबर नहीं है। वो सोचता है कि जैसे हमारे जीवन में अलग अलग विभाग हैं, वैसे धर्म या भक्ति भी एक और विभाग है। जैसे दफ्तर में जाएंगे, कुछ काम करेंगे, वैसे भक्ति भी करेंगे, लेकिन भक्ति ही सर्वस्व है इसको नहीं जानता, भक्ति ही हर विभाग का मूल है इसको नहीं जानता। इसलिए अन्य इंद्र तृप्ति के कार्यों में भी वो रुचि लेता है, इधर पूजा भी करेगा उधर जाके फिर बाहर भोग भी करेगा। ये और एक लक्षण है उसके। इस प्रकार से कनिष्ठ अधिकारी हमेशा कनिष्ठ रहेगा, सही है? नहीं, क्यों नहीं सही है? अगर उत्तम भक्त का संग करेगा और उत्तम भक्त की निंदा नहीं करेगा और अन्य वैष्णवों की निंदा नहीं करेगा, नियमों का पालन करेगा, तो वो भी क्रम से धीरे धीरे प्रगति करके एक दिन उत्तम भक्त खुद भी बन सकेगा। लेकिन अगर उसने वैष्णवों की निंदा करना छोड़ा नहीं, तो फिर बहुत मुश्किल होगा उसको प्रगति करने के लिए, वो कभी भी उत्तम भक्त नहीं बन पाएगा। इस प्रकार से नव योगेंद्रों ने निमि महाराज को इन तीन भक्तों के, इन तीन श्रेणियों के बारे में उपदेश दिया। अब आखिर में इस एक श्लोक को हम पढ़ते हैं जिसमें रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में बताते हैं कि हमें व्यवहार कैसे करना चाहिए इन अलग अलग तरह के भक्तों से। यहां पर मध्यम अधिकारी के बारे में बताया गया था कि अलग अलग वर्गों से कैसे बर्ताव करना चाहिए, लेकिन अलग अलग श्रेणी के भक्तों से कैसे बर्ताव करना चाहिए इसके बारे में यहां पर श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं।
कृष्णेति यस्य गिरितं मनसा ध्रियेत, दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिष्भजनानमीशम्। शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य, निन्दादिशून्य हृदमीप्सित संगलभ्या।
पाद द्वारा मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त कृष्ण नाम का जप करता है उसका मान से आदर करें। उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगति करे और श्रद्धा पूर्वक सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना या निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो रूप गोस्वामी बता रहे हैं। यहां पर तीन तरह के भक्तों की बात कर रहे हैं रूप गोस्वामी, और इन तीनों के प्रति हमारा व्यवहार अलग अलग होना चाहिए। सबसे पहला है कृष्ण इति यस्य गिरि। गिरि मतलब अपनी वाचा, अपने शब्द। जिसके मुख से कृष्ण का नाम आता है, मनसा आद्रियेत, अपने मन से उसको नमस्कार करना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। मतलब जो बिल्कुल नौसुखिया भक्त है, साधारण वैष्णव, उसको भी सम्मान देना चाहिए मन से, क्योंकि उसके मुख से कृष्ण का नाम आ रहा है। दूसरा, दीक्षास्ति चेत प्रणतिभिश्च भजन तमीशम। दूसरे श्रेणी का भक्त जो है वो है जिसने दीक्षा ग्रहण की है एक आध्यात्मिक गुरु से, और जो प्रणतिभिश्च भजन तमीशम, उसने आश्रय लिया है भगवान की सेवा में, विशेष करके भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा में रत है। उसके प्रति हमें कैसे आदर व्यवहार करना चाहिए? प्रणतिभिश नमस्कार करना चाहिए, उसको प्रणाम करना चाहिए। एक दीक्षित भक्त से ऐसा हमें व्यवहार करना चाहिए। ये दूसरे श्रेणी के भक्त हुए। और तीसरे श्रेणी के भक्त हैं भजन विज्ञम, जो भजन के विज्ञान में बड़े दक्ष हैं, अभी निपुण हैं। मतलब वो सब जानते हैं भक्ति कैसे करना चाहिए, भक्ति के मार्ग में काफी आगे बढ़े हुए हैं। भजन हम अनन्यम, अनन्य भाव से भगवान कृष्ण का भजन करते हैं, और दूसरा लक्षण, दूसरा गुण क्या है ऐसे भक्त का? अन्य निंदा आदि शून्य हृदय। उनके हृदय में अन्यों की निंदा करने की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, अन्यों की निंदा की इच्छा शून्य होनी चाहिए हृदय में, हृदय निंदा प्रवृत्ति से रहित होना चाहिए। तो जो भजन विज्ञ है और जो निंदा शून्य है जिसका हृदय, ऐसे उत्तम अधिकारी भक्ति भक्त का संग हमें प्राप्त करना चाहिए, संग लब्ध्या। और संग प्राप्त करके क्या करना चाहिए उनका? शुश्रूषया, उनकी श्रद्धा पूर्वक सेवा करनी चाहिए। तो इस प्रकार से वैष्णव तो बहुत सारे हैं, लेकिन वैष्णवों में भी कैसे हमें किस वैष्णव से कैसे बर्ताव करना चाहिए, इसका एक सूत्र यहां पर श्रील रूप गोस्वामी बतला रहे हैं। तो बताइए यहां कौन से तीन प्रकार के वैष्णवों का वर्णन है? पहले श्रेणी में कौन है? कृष्णेत यस्य गिरी, मतलब जिनके मुख से कृष्ण का नाम आता है उनके प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? मनसाद्रियेत, मन से आदर करना चाहिए। दूसरे श्रेणी दीक्षा, दीक्षा अस्ति, जिन्होंने दीक्षा ग्रहण किया हुआ है सही परंपरा में एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से, दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो क्या कर रहा है? अर्चा विग्रह की सेवा में लगा हुआ है। और ऐसे भक्त के प्रति हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए? प्रणत भी ही, मतलब प्रणाम करना चाहिए। और तीसरे श्रेणी के भक्त कौन से हुए? भगवान के भजन में रत रहते हैं अनन्य भाव से, और इसमें काफी निपुण है, भगवान का विज्ञान उनको मालूम है, सदैव भगवान की सेवा में रत रहते हैं। और साथ साथ महत्वपूर्ण बात क्या है? उनके हृदय में अन्यों की निंदा करने की प्रवृत्ति शून्य है। अगर ऐसा कोई भक्त हमको मिल जाए तो क्या करना चाहिए? दो चीजें करनी चाहिए, संग लब्ध्या, मतलब संग प्राप्त करना चाहिए। और संग प्राप्त करके क्या करना चाहिए? शुश्रूषया, उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार से रूप गोस्वामी भी वैष्णव कौन है ये भी बताते हैं, तरह तरह के स्तर हैं वैष्णवों के, उनका वर्णन भी करते हैं, और साथ साथ हमें उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए ये भी बताते हैं। ज्ञान और विज्ञान, मतलब एक जानकारी भी देते हैं कि वैष्णव कौन से प्रकार के होते हैं, साथ साथ प्रैक्टिकल दृष्टि से हमें कैसे बर्ताव करना चाहिए इन वैष्णवों के साथ में, इसका ज्ञान भी शास्त्र में हमें मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। आज क्लास थोड़ी लंबी खींच ली क्योंकि प्रसाद का समय बच गया ना।
ने अभी अलग अलग स्तर पे जो अलग अलग प्रकार के भक्त होते हैं उनका वर्णन किया है, तो हम अभी नाम लेने के और श्रद्धा के नाम पे और दृष्टि के स्तर पे हमने तीन वर्ग देखे, तो कभी हम देखते हैं कि कभी जो श्रद्धा के स्तर पे उत्तम रहते हैं वो अन्य दूसरों चीजों के ऊपर भी उत्तम ही रहते हैं कि उसके ऊपर कम ज्यादा रहते हैं?
थोड़ा प्रश्न का स्पष्टीकरण कीजिए।
अभी श्रद्धा के स्तर पे, श्रद्धा के उस स्तर पर अगर कोई उत्तम है, पूरी तरह से भगवान में विश्वास रखते हैं या उसका जो भी शास्त्रों का ज्ञान है पूरी तरह से रहता है, तो अन्य स्तर जैसे कि हमने देखे दृष्टि के स्तर पे वो भी उत्तम ही ऊपर के स्तर में रहते हैं उस तरह?
बिल्कुल, परंतु हमें ये जानना चाहिए कि जब हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि उसकी दृढ़ श्रद्धा है, ये एक ऐसा शब्द है कि इसका नाप तोल कैसे करें, इसको कितना बताइए, 5 डिग्री है, ये 10 डिग्री है, तो इसमें भी अलग अलग स्तर हो सकते हैं। दृढ़ विश्वास हम कहते हैं, एक का भी दृढ़ विश्वास है लेकिन दूसरे का बहुत ज्यादा और परिपक्व हो सकता है उसमें। तो ये एक मात्रा की बात है। जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति में प्रगति करता है उसकी श्रद्धा और भी दृढ़ होती जाती है, और जैसे जैसे उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती है वैसे वैसे जो उत्तम भक्त के लक्षण होने चाहिए वो खुद ब खुद उसमें प्रकट हो जाते हैं। जैसे वो श्लोक बताया ना कि उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसारी, श्रद्धा के अनुसार जैसे उसके दृढ़ विश्वास की दृढ़ता में और परिपक्वता आती रहेगी वैसे वैसे ये सारे लक्षण, उसकी दृष्टि भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, उसके अंदर हृदय निंदा करने की जो प्रवृत्ति है वो भी धीरे धीरे से कम होती जाएगी। सब शनै शनै होता है, क्रम से होता है ये सब, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बस ये उत्तम और यहां लाइन है बीच का, रेखा है बीच में, यहां से क्रॉस कर लिया तो यहां उत्तम बन गए, ऐसा नहीं। ये क्रम से धीरे धीरे प्रगति करने की बात है।
भगवान का हरेक का अपने अपने प्रति एक भाव रहता है, तो भाव के प्रति क्या हमें उसमें टोका टाकी से दूर रहना चाहिए? अक्सर देखा गया कि दूसरे को टोकते रहते, नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। तो भाव को और सही तरह से करने में दोनों के बीच में क्या डिफरेंस मेंटेन करना?
भाव का अपना स्थान है और सेवा का अपना स्थान है। सेवा के समय सेवा वो भी अच्छी भावना से करनी चाहिए, परंतु जब सेवा करने के लिए कोई चीज अनुकूल है उस चीज को हमें स्वीकार करना चाहिए। और अगर किसी का भाव है कि सेवा को इस तरह से करें, अगर वो ऐसी सेवा है कि उसे उस भाव से करने में सेवा में कोई नुकसान नहीं पहुंचता तो करने दे, कर दे, कर सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए, एक उदाहरण दे कि भगवान के अर्च्य विग्रह का श्रृंगार हो रहा है। अब 5:30 बजे शुरू हो जाता है या 5:15 बजे, अब 7:15 के पहले सब कुछ समाप्त करना है, तो सबको भक्ति भाव से भी करना है श्रृंगार, साथ साथ समय घड़ी के ऊपर भी एक नजर रखना है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि अपने भाव के अनुसार वो बस करता रहे 4 घंटे ले ले, तो भाव को व्यक्त कर रहा है परंतु अभी सेवा के लिए अनुकूल नहीं है, एक अमुक मात्र एक स्तर के आगे उसको बोलना चाहिए बस अभी इतना हो गया ठीक है। तो भाव में हमें कई चीजें देखनी पड़ती हैं। जब भगवान की सेवा की जाती है तो इसमें नियम होते हैं, तो भाव को भी हमारे नियम के बाहर नहीं रखना चाहिए और नियम का पालन भी भाव से करना चाहिए।
तो ऐसे वक्त में अगर कोई कनिष्ठ भक्त मध्यम अधिकारी यानी मध्यम भक्त को अगर कुछ कहता है तो उसमें कुछ दोष है?
अभी ऐसा नहीं है कि हम लोग हर एक भक्त के ऊपर एक लेवल लगा लें। आज से अभी हमने सुन लिया ये 3 प्रकार के वर्ग हैं, अब इसके ऊपर हमने लेबल लगा लिया, कनिष्ठ हो गया और ये आ गए, ये मध्यम हो गए। तो ऐसे उपाधि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हमें तो सोचना चाहिए कि सब अच्छे वैष्णव हैं, सबका आदर करके हमें रहना चाहिए। और अगर कोई हमारी भावना है जिसको कि हम सोचते हैं कि अन्य भक्त समझ नहीं रहे हैं, तो बड़े अच्छी भावना से हम उनको व्यक्त कर सकते हैं हमारी भावना को, और वो वैष्णव भी हमको समझाएंगे कि ठीक है आपकी भावना अच्छी है परंतु अब इस समय सेवा समाप्त करना है, अभी शंख बजाने का समय आ गया है और भक्त लोग भी राह देख रहे हैं, तो ऐसे समझाकर हो सकता है। भाव और नियम इन दोनों का मिलन होना चाहिए, इन दोनों का समन्वय होना चाहिए। यहां एक प्रश्न है, हरि बोल, अगर पतन हुआ तो उसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए और हमारा उसके साथ व्यवहार संबंध है तो कैसे बर्ताव करना चाहिए? अगर किसी भक्त का पतन हो गया तो उसके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए, यह प्रश्न है। तो हमें क्या सोचना चाहिए, आप जवाब दीजिए। प्रेम, मैत्री, करुणा, उपेक्षा, क्या करना चाहिए? प्रेम भी होना चाहिए, मैत्री भी होना चाहिए, करुणा भी होना चाहिए, ये तीनों होने चाहिए। लेकिन पतन होने के बाद अगर वो द्वेषी बन गया तो फिर चौथा वाला चौथा नंबर का आएगा। अगर वो द्वेषी नहीं है तो तीनों हम कर सकते हैं, प्रेम भी देना चाहिए, मैत्रीता भी रखना चाहिए और करुणा भी होनी चाहिए। ठीक है, आपने बताया कि जैसा संग वैसा रंग, लेकिन हमें घर में ही ऐसा संग मिलता हो तो हम क्या कर सकते हैं? हाँ, जैसा संग वैसा रंग, तो आपके संग से आपका रंग उनको दे दीजिए ताकि घर में सभी लोग वैष्णव बन जाएं। और अगर वो लोग वैष्णव बनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो खैर क्या किया जा सकता है, हमें